उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। जब हम क्वालिफाइड होंगे ये चीजें अपने आप रिवील हो जाएंगी, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम महाप्रभु की लीला में हैं, हमारा ओरिजिनल रूप, तो हमें बंगला नहीं सीखनी पड़ेगी, बंगला अपने आप आ जाएगी जब वो रूप में पहुंच जाएंगे। बंगला सीख के कोई महाप्रभु की लीला में प्रवेश नहीं पा सकता। हम उल्टा तरीका अपनाते हैं। जब हम क्वालिफाइड होंगे अपने आप आ जाएगा सब, पहले क्वालिफाइड तो हो। अभी ABCD आती नहीं, ब्रेन सर्जरी की बात कर रहे हैं, कहां से दो चीजें मैच ही नहीं करेंगी, कंपेटिबल ही नहीं है। After 70, he'll cross over the ocean and open temples. Yeah, but he had to work hard. He left his business, he left his family, came to Radha Damodar temple. How much he struggled in Delhi to print first canto of Bhagavatam, to print Back to Godhead magazine. How much he struggled to distribute those Back to Godhead magazines. He could have just sat in his house in Allahabad. Oh, after 70, I'll go. Till then, let me relax, enjoy. नहीं, that's what we have to do. जैसे तमालकेश महाराज ने एक बार एग्जाम्पल बताया था, एक उनके गुरु भाई थे, नाम नहीं बताया उन्होंने, वो इसी तरह राधा कुंड पे किसी बाबा जी से मिले और बाबा जी ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा जो स्वरूप है कृष्ण लीला में वो एक मोर का है, पीकॉक का है। तो तमालकेश महाराज एक बार उसके कमरे में गए तो वो मोर बन के चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। तमालकेश महाराज ने पूछ लिया क्या कर रहा है, तो उसने बता दिया। अब अगर तमालकेश महाराज से आप मिले नहीं तो अच्छा ही है। बहुत गुस्से वाले कहते हैं उसको, उसी को डांट लगाई। अगर तुम्हारा स्वरूप मोर का भी है तो जब रियलाइज कर जाओगे तो अपने आप मोर बन के चलोगे, प्रैक्टिस करने से थोड़ी तुम गोपी या मोर बन जाओगे। चलने की आर्टिफिशियली प्रैक्टिस करने से थोड़ी हम वो बन जाएंगे। अभी तो हम बहुत नीचे की स्टेज में हैं। अभी तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहले श्लोक का पहला वर्ड नहीं हुआ हमसे, वाचो वेगम नहीं हुआ है। और हम सोच रहे हैं आगे की स्टेप्स कहां से संभव है। वाणी पे कंट्रोल आ गया, मन और करो तो बात की चीज है, वो सेकंड थर्ड है। पहला तो वाणी का वेग है, वो ही नहीं हुआ है। हम सोचे हैं कि कोई हमें बता दे हम गौर किशोरदास बाबा जी, हम बन गए, कैसे संभव है। इसलिए हमें गुरु के, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में रह के ही भक्ति करनी है और आगे बढ़ना है, तभी हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो गिरेंगे। ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी इसलिए बोला है कि इमेजिनेशन है, गिरेंगे इससे और कुछ नहीं होगा, पक्की बात है। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी किताबों में सिर्फ ABC दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने टॉप मोस्ट चीज दी है, पढ़ने वाली आंखें चाहिए। हमारे पास वो आंखें नहीं है, वो दिमाग नहीं है, समझ सके प्रभुपाद जी ने क्या दिया है। उन्होंने राधा कृष्ण की सारी लीलाएं भी दी हैं। देखने वाले आंखें चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। तो अगर वो हो, अगर आंखें ना हो और सामने एकदम अंतरंग लीलाओं के बारे में भी लिखा हो, हम भी हम उसको गलत नजरों से ही देखेंगे, क्योंकि अभी वो प्रेमांजन छुरीता नहीं है तो नहीं देख सकते। इसलिए प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पे जब चलेंगे ठीक से, तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे।
कैसे लौट आते उन्होंने यही बात कही, लौट इसलिए आते हैं कि धाम उनको दिखता ही नहीं, टूरिस्ट जाता है घूम के आ जाता है।
हम धाम में एंटर कहाँ करते हैं अभी?
यही बात तो कह रहे थे कि धाम में तो एंटर करते हैं, धाम में एंटर कर जाओगे तो निकलने को जी करेगा, इंसान
निकलोगे ही नहीं।
वो सुनोगे एक सज्जन का बताया कि बात वो पिछले 55 साल से उन्होंने बाउंड्री नहीं क्रॉस की है
वृंदावन के। सी जैसे उस दिन डिस्कशन
हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में ही सारे तीर्थ हैं, वो उस मंदिर से ही नहीं निकले। जब उनका लास्ट समय आया तो उनको गाल ले जाने के लिए गालने के लिए हुआ, पर फिर भी उन्होंने उस समय मना किया, बंद साहब कुछ लोग ले गए। कल उन्होंने 36 साल ये कितने साल उसी मंदिर में गए, मंदिर मंदिर में कितने साल हो गए।
पर ओके दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये जैसे ब्रह्म संहिता बताया गया ना, चिंतामणि प्रकर सद्वशो कल्प वृक्षा लक्षावृतेशो, कि वहाँ धाम में हर घर जो है चिंतामणि से बना है, एक एक घर उसके एक एक पार्टिकल जो है चिंतामणि है। और चिंतामणि कब हम मिलेगी? जब हम मनी की चिंता छोड़ेंगे। अभी तो हमें मनी की चिंता है तो इसलिए चिंतामणि नहीं मिलती जब हम ये अटैचमेंट छोड़ेंगे तब तो वहां जा पाएंगे, समझ पाएंगे है क्या वो।
या तो उनको धाम दिखने लगा या उन्होंने प्रैक्टिस की कि मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, दोनों स्थिति हो सकती है। वो कौन सी स्थिति में नहीं मालूम, दोनों स्थिति में आदमी रह सकता है,
रह सकता है। पर दोनों ही स्थिति में अगर मान लो नहीं भी दिख रहा पर इफेक्ट तो पड़ेगा ना, धाम में रहने का बिल्कुल पड़ेगा, धाम प्योर है। और फिर बिना परमिशन के भी नहीं रह सकते वहाँ। और फिर उससे भी ऊपर एक चीज जो है, शिल प्रभुपाद ने क्या कहा, मेरे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं वैकुंठ धाम है। तो हम यहाँ रहे वृंदावन में रहे, मेन चीज़ है कॉन्शियसनेस क्या है। और अगर कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, वृंदावन में रह भी रहे हैं, चाहे हमने क्षेत्र संन्यास ले लिया है कि वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, और कई बार ऐसा भी देखा गया है, हर केस में नहीं होता, कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जो है वहां जाके मतलब अंत समय में बीमार हो गया, उसको इलाज कराने दिल्ली ले आया और दिल्ली में शरीर छोड़ दिया, बहुत होता है। या एक हमारे जानने में है, रमाई प्रभु बॉम्बे से हैं, उनकी सिस्टर की शादी यहाँ हुई है इस दिल्ली में। तो रमाई प्रभु बॉम्बे से हैं तो उनका कुछ बिजनेस वगैरह सेट नहीं हो रहा था वहाँ पे। वो रमाई प्रभु उनके दो सिस्टर्स हैं, तीनों ही जो हैं श्रीधर महाराज के डिसाइपल हैं। तो एक सिस्टर बॉम्बे में रहती है, एक यहाँ, रमाई प्रभु बॉम्बे में थे तो यहाँ आए सिस्टर के पास के चलिए इनके पास जाके कुछ काम करूंगा जीजा जी के साथ मिलके। तो एक ही लड़का है तो इनके पिताजी जो हैं बॉम्बे से यहाँ आए मिलने के लिए, कि लड़के को मिला हूँ, दो तीन महीने हो गए हैं, क्या उसका हो रहा है। तो जब वापस जा रहे थे तो दिल्ली स्टेशन पे कहीं गिर गए वो, कोई बेंच वेंच था उनको लगा सिर पे, उनके साथ नौकर भी था। तो क्या डॉक्टर ने थोड़ा पट्टी वगैरह कर दी, बैठ गए ट्रेन में और जा रहे थे। तो जैसे ही ट्रेन कोसी से आगे निकली उनकी डेथ हो गई, कार्तिक के महीने में, कार्तिक के। भक्त नहीं है पिताजी, कोई चैंटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करते। और फिर डेथ हो गई तो अथॉरिटीज को सब पता चला ट्रेन में, तो उनको भाई डेड बॉडी ले जा नहीं सकते, तो नेक्स्ट स्टेशन पे उतारना था, नेक्स्ट स्टेशन मथुरा था नेक्स्ट स्टेशन मथुरा। शाम को ट्रेन वहाँ पहुँची, मथुरा बॉडी उतारी गई, इनको फ़ोन किया गया, किसी तरह कांटेक्ट किया गया। तो ये लोग पहुँच रहे थे, इन्होंने क्या किया, वृंदावन टेम्पल में उनको मुकुंद दत्त प्रभु को जानते थे, हेड पुजारी जो हैं, उनको फ़ोन किया कि इस तरह से हो गया है। मुकुंद दत्त प्रभु या टेम्पल के और जो अथॉरिटीज थे उन्होंने किसी पुलिस के इस पुलिस से बात करके कि उनका पोस्टमार्टम नहीं करना, बॉडी जो है वृंदावन ले गए, वहाँ गौशाला में सारी रात बॉडी रही, भक्त लोग कीर्तन करते रहे, रमाई प्रभु लोग रात को पहुँचे और अगले दिन सुबह वहीं संस्कार किया गया वृंदावन। तो सारे भक्त कह रहे थे कि हमारी मृत्यु ऐसी हो, हम तो ऐसी याचना करते कार्तिक में ब्रजमंडल में शरीर छोड़ना, तो बच्चे तो भक्त हैं ना तीनों बच्चे इनिशिएटेड हैं यशोदे महाराज से और फिर एक बात और आती है, चमेली के पेड़ पे चमेली का फूल आता है। वो बात अलग है, पर हाँ उन्होंने शरीर छोड़ दिया था ना ब्रज ने, तो कॉन्शियसनेस अगर ठीक है तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट कर देंगे, और कॉन्शियसनेस ठीक है तो कहीं भी शरीर छोड़ दो। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज ने जब शरीर छोड़ा, सारी ऑप्शंस थी उनको, सब ने कहा, जीबीसी ने कहा वृंदावन आ जाओ, मायापुर आ जाओ, बोले नहीं मैं गीता नगरी में ही शरीर छोड़ूंगा अमेरिका में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा ये गीता नगरी भी वृंदावन से अलग नहीं है, मैं यहीं शरीर छोड़ूंगा ताकि मैं अपने डिसाइपल्स को भी सिखा सकूं कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस। और सब कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, राधानाथ महाराज भी वहीं थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने ऐसे दिखाया। ऊपर नीचे सात और एक ये वाली 15, और प्रहलाद महाराज केस में 21 बताया गया है। मुक्त हो जाती है मतलब भगवान के धाम नहीं चले जाते, अवसर मिल जाता है भक्ति में लगने का। भगवान के धाम जाना मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं तभी जा सकते हैं, पर इस केस में हो सकता है पिछले जन्म में की हो, काफी भक्ति की हो, थोड़ा सा कुछ रह गया हो, क्योंकि ये जन्म पहला भी नहीं है आखिरी भी नहीं है, होपफुली आखिरी हो तो पिछले जन्म में किसने क्या किया हमें क्या पता ना, कहां तक भक्ति करके छोड़ी है क्या पता। तो इस वजह से भी किसी को हम जज नहीं कर सकते बड़ा मुश्किल है जज करना। तो भगवान ने उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट किया, ब्रजमंडल में कार्तिक में शरीर छोड़ा और संस्कार भी वृंदावन में हुआ और क्या चाहिए किसी को। चलिए तो आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी, के कार्य करना ही मतलब भक्ति में सेवा करना ही डिवोशनल सर्विस है। व्यवहारिक सक्रियता है, निष्क्रियता नहीं है भक्ति। भक्ति का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाएं या सिर्फ अपने ध्यान लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब भी डिवोशन शब्द आया उसको क्या ट्रांसलेट किया, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब सर्विस करनी है, बिना उसके संभव ही नहीं है कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। सर्विस के अलग अलग तरीके हैं वो बात अलग है, पर तो सर्विस करनी है गुरु के कहनुसार सर्विस करनी है। ताकि जैसे श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और हो सकता है अगली बार सब याद करके आए तो। और ये वैसे परिभाष्य सूत्र है भक्ति रसामृत सिंधु का, परिभाष्य सूत्र मतलब जिस पे पूरा ग्रंथ टिका होता है, तो ये वो यही है भक्ति रसामृत सिंधु का, अन्य अभिलाषिता शून्यम। वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं, पर रूप गोस्वामी ने अभिलाषिता क्यों बोला, अभिलाषा क्यों नहीं बोला? आप तो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, अन्य अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है डिजायर, तो अभिलाषिता क्यों बोला?
वो अभिलाषा हो, जैसे द्रौपदी की भगवान उस टाइप की अभिलाषा कर सकते हैं.
ओके, बट एग्जांपल ठीक है और आगे कुछ और एक्सप्लेनेशन है.
मतलब इसका ये कि जो निंदनीय है उसको नहीं करना, वंदनीय अभिलाषा है उसको कर सकते हैं. अगर हम कहेंगे हमको भगवान को प्राप्त करना है तो ये अभिलाषा तो हम कर सकते हैं, इसलिए अभिलाषा से दूर सीखिए.
भौतिक
अभिलाषा नहीं करती, हमको आध्यात्मिक अभिलाषा को
और
नहीं
तो जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल उधर भी दिया गया है, तो द्रौपदी ने तो अभिलाषा की थी ना उसकी रक्षा हो, तो ये भौतिक थी आध्यात्मिक थी क्या थी? द्रौपदी का एग्जांपल उधर भी आया था नेक्स्ट डिवोशन में. तो इसमें तो अन्य अभिलाषिता शून्यम लिखा है. नहीं वो अलग है. अभिलाषिता जो बोला गया है वो है डिजायरनेस. मतलब डिजायर हो सकती है पर अल्टीमेट कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे द्रौपदी की डिजायर थी कि उसकी रक्षा हो, पर अल्टीमेट कॉन्शियसनेस क्या है कि सर्व करो, तो इसलिए वो अपनी अभिलाषिता शून्य की कैटेगरी में आ गई. कॉन्शियसनेस उसकी वही थी,
रक्षा करती होती तो वो भगवान को सरेंडर नहीं करती. इसका मतलब
भगवान भी तो फिर अरेंजमेंट करते ना पूरा कि कोई और करेगा ही नहीं. भगवान ने अपना भी तो दिखाना
है. उन्होंने पहले पति की तरफ देखा, फिर भीष्म पितामह की तरफ देखा, फिर द्रोणाचार्य को देखा, फिर द्रोणाचार्य को देखा. जब उन्होंने देखा फिर अपनी खुद इतनी बड़ी छत्रानी थी कि अपने दांत से पल्लू पकड़ा. फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो वहाँ हे द्वारकाधीश तब आवाज दी, तब द्वारकाधीश दौड़े चले आए, वो इंतजार कर दी आवाज ने. तो इसके मतलब अभिलाषिता शून्य और अभिलाषा में यहाँ पर
सी. पर दूसरी तरफ से ये भी देखो ना कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे. भगवान उसके एग्जाम्पल से सब दिखाते हैं. एक तो कोई और शरण देगा नहीं, और मेरे पास भी आओगे तो अभिलाषा चाहे हो, कॉन्शियसनेस ठीक होनी चाहिए. नहीं, अभिलाषिता मीन्स डिजायरनेस. तो अन्य अभिलाषिता शून्य मीन्स डिजायरनेस भी खत्म. नेस एन ई एन एन दैट इज अभिलाषिता. शून्य मीन्स नो डिजायरनेस, नॉट इवन आई मीन कॉन्शियसनेस भी ठीक है, चाहे एक्सटर्नली कुछ और एक्टिविटी हो गई हो. ऑन द अदर हैंड हरिदास ठाकुर हैं, डजंट मैटर यू डू वट एवर, मेरे को नहीं चाहिए. मार भी रहे हैं तब भी वो अपनी रक्षा के लिए भी नहीं बुला रहे. तो ऐसा नहीं कि द्रौपदी हरिदास ठाकुर से किसी मामले में कम है, भक्ति के दोनों शुद्ध भक्त हैं. तो वो ही आगे आएगा ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम. ज्ञान और कर्म से भी ढका हुआ नहीं है. क्या ढकी नहीं है? अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम, अनुकूलेना फेवरेबल टू कृष्णा, एंड देन अनुशीलनम कल्टीवेशन. बैठने की बात नहीं कर रहे, कल्टीवेशन मींस एक्टिविटी वर्क. इसलिए इस मूवमेंट को क्या कहा, हरे कृष्णा आंदोलन. आंदोलन मतलब सक्रियता, कुछ काम करना है, बैठना नहीं है। तो दैट इज भक्तिर उत्तमा, वो है उत्तम भक्ति। बहुत वाक्य परिभाषा सूत्र है, इतने वर्ड्स आए हैं इसमें, जैसे अनुकूले न कृष्णानु, कृष्णा के जो फेवरेबल हो। अब कृष्णा के क्या फेवरेबल होता है? कृष्ण की इच्छा थी युद्ध करने की, वो बताया गया ना, उनके मन में इच्छा होती है लड़ाई करूं, तभी उन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को जन्म दिया, तभी आए ना जय विजय दोनों बन के। पर उन दोनों ने कृष्ण विष्णु के साथ युद्ध किया विष्णु की प्रसन्नता के लिए, पर वो क्या कृष्ण प्रसन्न हुए? फेवरेबल था? क्या वो फेवरेबल भक्ति थी? तो दोनों डीमंस क्यों बोले गए? डिवोटीज क्यों नहीं बोले गए?
जिस समय जय विजय विष्णु की प्रसन्नता के लिए डीमंस बने, तब तक वो विष्णु की प्रसन्नता, उसके बाद फिर वो डिफरेंट पोजिशन। अब जैसे कैकेयी को राम की को के लिए वनवास मांगा, तो कहते ही ये है कि कैकेयी को राम सबसे ज्यादा प्रिय थे, पर उन्होंने तो कोई और दूसरा ही पार्ट अदा ही नहीं कर सकता, इसलिए
पर भगवान तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से नहीं प्रसन्न थे ना, रावण कुंभकर्ण से प्रसन्न थे नहीं थे? अवश्य शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में क्या लिखा है? तो दोनों सब डीमंस के बोले जाते, डिवोटीज के नहीं बोले जाते, पर वो फेवरेबल नहीं है ना। और दूसरी तरफ यशोदा मैया ने लाला को बांध दिया, छड़ी भी उठा के मारने वाली है, रो भी रहा है, पर वो फेवरेबल बताया गया। अंदर क्या भाव है? तो उनको इसलिए तो तीन डीमंस या सेवन बर्ड्स ऑफ डिवोटीज क्या लेना है? बोले हमें डीमंस बनना है ताकि हम जल्दी आ सकें सेवा में। तो जय विजय थे तब तो सेवा का भाव था, पर जब डीमंस बने तो पूरे डीमंस बने, पर वो कृष्ण के फेवरेबल काम नहीं किया इसलिए वो भक्ति नहीं है। पर वो भक्ति नहीं कही जाएगी ना, अनुकूल नहीं है ना, वो अनुकूल नहीं है ना। और यहाँ यशोदा भैया मार रही है वो अनुकूल है, वो कहां से दिख रहा है? वो तो रो रहा है। पर अनुकूल नहीं है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का काम पर एक चीज है, एक एक कल्प में ही जय विजय आते हैं, हर कल्प में नहीं आते, बाकी कल्पों में डीमंस भी होते हैं जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं। तो ये भी नॉन डिवोटी है, इनको डिवोटी नहीं बोला गया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को डिवोटी नहीं बोला गया। तो ये फेवरेबल नहीं है, भगवान के फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए भक्ति नहीं है। इसमें कृष्णानु कृष्णानुकूल है। और सेकेंडली कृष्ण को और क्या पसंद है? कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मक्खन नहीं बोलना, डिवोटीज। तो अगर कोई इनके भक्त के फेवर में नहीं भी है तो भी ये भक्ति उत्तम नहीं हो सकती। अगर कोई उनके भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है तो कृष्ण के प्रति अपराध हो गया, वो मानेंगे नहीं उसको भक्त। जो कृष्ण के भक्तों के फेवर में नहीं है वो कृष्ण की साइड हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी कितनी मर्जी कंठी माला पहनी हो, धोती कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो ये भक्ति रसामृत का बेसिस है। भगवान कहते हैं गीता में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, राइट। पर उनके आने का मेन कारण क्या होता है, मकसद क्या होता है, विनाशाय च दुष्कृतं होता है। इनको मारने के लिए तो कोई भी एनर्जी भेज सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक दे दिया उनके लिए क्या मुश्किल बात है। हिरण्यकशिपु को हार्ट अटैक नहीं दे सकते थे क्या, ब्रेन हेमरेज कर देते, क्या मुश्किल था उसके लिए, भगवान को क्यों आना पड़ता। ऐसा नहीं है, होती नहीं थी। करने को तो कर सकते हैं, भगवान के लिए मुश्किल क्या, अभी तो पड़े थे अभिज्ञ स्वराट इंडिपेंडेंट कुछ भी कर सकते हैं। इनको मारने के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता, उनके रक्षा करने के लिए। भक्त हमेशा रक्षित है, भक्त कुछ हो ही नहीं सकता, सुदर्शन चक्र तो हमेशा उनकी रक्षा के लिए खड़ा है, उनको बस आनंद देने के लिए लीला करते हैं, ताकि ये भी आनंद ले, आने वाले जो भक्त आएंगे आगे भी उनको भी आनंद मिले। उनको तो आते ही आते हैं, इसलिए आते हैं। जब कृष्ण बन के आए, कृष्ण लीला अपनी की उन्होंने, उसमें क्या बताया गया कि कृष्ण जब आ रहे थे सारे जो उनके विस्तार अंश वन सब जो है उनमें समाहित हो गए थे, तब आए। तो जो डीमंस को मारने का काम तो विष्णु करते थे, कृष्ण नहीं करते थे। जिनने असुरों को मारा विष्णु ने मारा था, वो ये सब नहीं करेंगे। उनको तो बस गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलना है, लीला करनी है। तो ये परित्राणाय साधूनां असल में सही नहीं है। कृष्ण के लिए नहीं है ये। वो सब करते रहते हैं, कृष्ण नहीं करते। वो मारने का काम विष्णु का, उनकी बॉडी में जो विष्णु है ना वो मारते हैं, कृष्ण नहीं मारते, कृष्ण वह लीला करते हैं, एंजॉय करते हैं। सुदर्शन चक्र कृष्ण थोड़ी चलाते हैं, वो विष्णु चलाते हैं। कृष्ण के पास तो बांसुरी है, लठिया है, सुदर्शन का है। अस्त्र शस्त्र नहीं, सिर्फ एंजॉय कर रहे
हैं। देखिए उसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी उसने समझ लिया कि, और हम लोगों को सब कुछ बताया जाता, फिर भी हम लोग संशय करते रहते हैं कि क्या है।
ठीक है, और धर्म स्थापना, धर्म स्थापना करने का भी काम उनका नहीं है, उसके लिए तो शास्त्र हैं, अपने साधुओं को भेज देते हैं। धर्म की स्थापना करने थोड़ी आएंगे, सिर्फ एक ही काम करें, अपनी लीला करने आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं बस। आप कुछ क्वेश्चन था रसिकेश, वो सिर्फ इसलिए आते हैं। और आपने जो जो बताया ना कृष्ण बांसुरी लेके खड़े, इसलिए भगवान है। अब वो गौर नेताई के मंदिर में नहीं गया होगा, ये तो नाच रहे हैं। ये तो वाकई भगवान होंगे। इनको तो और कोई काम ही नहीं, नाचते रहते। और वैसे कृष्ण ने भी वृंदावन में जब मारा, हालांकि विष्णु नहीं मारा, वृंदावन में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, कभी नहीं उठाया, किसी को मुक्के से मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, और तभी मारा विष्णु ने। क्यों, वृंदावन में विष्णु भी अपना पूरा फॉर्म नहीं ले पाते ना। नहीं तो सब डर जाएंगे, गोपियां गोप बालक सब डर जाएंगे, ये कौन है। वृंदावन से बाहर निकल के जो सुदर्शन चक्र उठाना है, और कोल्हे पेड़ का भी दांत निकाला तो मथुरा में निकाला, उससे पहले कुछ नहीं किया था। क्योंकि वहां वृंदावन में मधुरता जो है वो प्रमुख है, ऐश्वर्य सब छुपा रहता है, सिर्फ माधुर्य है। बाहर जाके ऐश्वर्य टेक्स ओवर। मथुरा में थोड़ा है, द्वारका में ज्यादा है। तो भक्ति वही है जो भगवान के फेवर में की जाए, और भगवान मतलब भगवान के भक्तों के भी फेवर में की जाए सेवा, वो भक्ति है। और अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और हमारी इच्छा मतलब कॉन्शियसनेस वैसी नहीं होनी चाहिए कि हमारी और कोई इच्छा है, और ज्ञान भी नहीं चाहिए, कर्म कर्म फल कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करनी है। और कल्टीवेशन, इसलिए कल्टीवेशन बोला गया है, ये सक्रियता है, इसमें हमें काम करना पड़ेगा, घर बैठे नहीं होने वाली। सिर्फ बैठ लें, किताबें पढ़ लें, सो लें, भक्ति भक्त बन जाएंगे, नहीं होने वाला। अनुशीलनम कल्टीवेशन, does Krishna say we should associate the devotees or Shastra say we should associate? Is there any difference between Krishna and the Shastras? गीता में कहाँ बताया, भगवत गीता में तद्विधि प्रणिपातेन भी है, शुड एसोसिएट आई मीन लर्न एग्जैक्ट श्लोक तो कोई याद नहीं आ रहा मेरे को भी, बट एसोसिएशन के बारे में तो सब जगह ही बताया गया, एंड शास्त्रस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, महाजन येन गता सपन्ता। तो बिना एसोसिएशन के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। और इसलिए दोनों श्लोकों में बताया गया है कि गलत संग नहीं करना है। जनसंग पिछले बार भी बोला गया, ये इसमें भी आ गया इस बार, संग त्याग। और चैतन्य महाप्रभु से भी जब भक्तों ने पूछा, जब आए थे वापस जा रहे थे रथ यात्रा के बाद, वैष्णव कौन है, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, जो असत संग त्याग दे। असत क्या है, स्त्री संगी, असाधु, ए भक्त, अभक्तार, तो ये तीनों असत में आते हैं। तो अगर ये छोड़ेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कहां से बढ़ेंगे। और फिर अगला श्लोक तो है ही एसोसिएशन के बारे में, एसोसिएशन वो भी लविंग एसोसिएशन कैसे होनी चाहिए, लविंग डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए। ओके, कौन आप पढ़ोगे? प्रभाव लिख रहे हैं, भक्ति इज सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्रियाशीलता है, निष्क्रिय होना भक्ति नहीं है। तो जैसे प्रभाव जी कहते हैं ध्यान लगाना नहीं है, जैसे छद्म योगी कुछ बताते हैं, सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है बैठ के, काम करना, सेवा करनी है। और प्रभा जी लिखते हैं, ध्यान लगाने से ठीक है कुछ समय तक जो मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं वो बंद हो सकते हैं तो ये उनके लिए ठीक है जो मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने, पर हमें सही वाले कार्य करने हैं, तो वो करेंगे तो मूर्खतापूर्ण कार्य अपने आप खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे। पर अगर सिर्फ ध्यान ही लगाते रहे वो सोचें इससे जो नेगेटिव काम है वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पर वो प्रोपेंसिटी फिर भी रहेगी वो करने की, वो इच्छा फिर भी रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी, तो इसलिए वो खत्म नहीं हो सकते। वो ध्यान भी लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कलयुग में तो खास कर मन पे कंट्रोल है नहीं और ध्यान दूसरी तरफ ही ज्यादा जाएगा, तो कहां से वो भक्ति है। तो इसलिए वो तरीका जो है मतलब कलयुग के तो एकदम ही खराब, कलयुग के लिए खराब है, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए हमें जो भक्ति करनी है जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये नौ तरीके से नवदा भक्ति जिसको बताया गया है, तो ये श्लोक भी अगर अगली बार याद करके आए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो नौ नवदा भक्ति जिसको बताया गया है, तो इसमें सबको पता है कि इनमें से कौन किस किस भक्त ने कौन कौन सी भक्ति की थी और सिद्धि प्राप्त कर ली, सबको पता है। श्रवणम में कौन और कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम वंदनम, तो अर्चनम अर्चनम पृथु महाराज वंदनम बकरूर जी दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम बलि महाराज और अम्बरीश महाराज सारे नौ। अच्छा, इसके आगे भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं एक और प्रोसेस है भक्ति का, वो है ईक्षणम, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करना, सिर्फ दर्शन करना। ईक्षणम जीव गोस्वामी IKSANAM, क्योंकि ईक्षणम किसी में नहीं आता ना, दर्शन करना, सिर्फ दर्शन, तो वो भी भक्ति उन्होंने कहा है भक्ति संदर्भ में बताया। एग्जाम्पल उन्होंने दिया नहीं भाई, रंग रंगनाथ जी के उधर श्रीरंगम में रामानुजाचार्य के उधर धनुर्धर ना किसमें हाँ हाँ या दीक्षणा में या दीक्षणा आता था। तो ईक्षणा मतलब भगवान का दर्शन करना, क्योंकि दर्शन कर रहे हैं तो ये इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं, नौ में से सिर्फ दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ दर्शन करने से भी कोई इतना शुद्ध हो सकता है भगवान के धाम जा सकता है, तो हमारी समस्या दर्शन करते हैं कभी मोबाइल चलता है कभी दिमाग तो हमेशा इधर से उधर भागता रहता है दर्शन करने के 5 मिनट बाद भी पूछ लो भगवान ने क्या श्रृंगार पहना था वो नहीं बता पाएंगे नहीं 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 नहीं, दर्शन करने की कॉन्शियसनेस क्या है ये डिपेंड करती किस करेगी। प्रभुपाद जी दर्शन करते हैं और देखते हैं क्या लीला कर रहे हैं, हमें कहाँ दिखती है लीला जैसे प्रभुपाद जी याद नहीं कौन सा मंदिर था, अमेरिका में था, तो प्रभुपाद जी एंटर हुए टेंपल हॉल में और DTS दूर थे, और प्रभुपाद जी एंटर करते ही बोलते DTS को देखा और कहते कृष्ण की आंख में लाल लाल क्या है। वो पुजारी सारे हैरान, वो भागे अल्टर पे देखने के लिए तो कुछ लाल रंग का गिरा हुआ था, वह प्रभुपाद जी को इतनी दूर से कैसे दिख गया एक बार क्या हुआ कुछ ना पेंटिंग चल रही थी मंदिर में, तो पुजारियों ने पर्दा उस दिन रात को बंद नहीं किया या बहुत लेट बंद किया था, पेंटिंग हो रही थी, और सुबह फिर जल्दी खोल दिया। और प्रभा जी आए दर्शन करने, बोले डीटीज की आंखें लाल क्यों हैं? बोले ये सोए नहीं है ना, रेस्ट नहीं किया। और पुजारी फिर के मतलब इनको कैसे पता चला कि पर्दा हमने थोड़ी देर के लिए बंद किया था। तो डीटीज रेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं हम सोच लें कि नहीं करते हैं, कुछ सब जो चलता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस, हम कैसे सेवा कर रहे हैं। भगवान है, निर्विशेषवादी नहीं है हम लोग। प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा लकड़ी की नहीं होती है, पत्थर की नहीं होती है, विग्रह की होती है, व्यक्ति की होती है। तो किसको होना चाहते हैं? जो भक्ति करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लें कि हमें रिवील नहीं हो रहा, तो मतलब नहीं है भगवान, नहीं है। हमारी सेवा में कमी है, तो हमें और सावधान होकर सेवा करनी चाहिए, खासकर जो डीटी सेवा में है बहुत सावधान होना चाहिए। और भगवान चाहोगे तो कई बार दिखा भी देंगे, वो वाकई है। वृंदावन में भी तो एक था, एक कोई भक्त था, कृष्ण बलराम, अपना मंदिर नहीं किस दूसरे मंदिर में, कृष्ण बलराम की सेवा में था। तो एक दिन वो चामर कर रहा था, बलराम जी को चामर ना थोड़ा सा टच हो जाता है, तो एक थप्पड़ मार देते बलराम जी। वो भक्त वो इन चामर वामर छोड़ के, नहीं करूंगा, एक थप्पड़ मार दिया इसने। सारे वो महंतवंत आए कि अब वो कुकिंग करता था, कहता कुकिंग भी नहीं करूंगा, बड़ी परेशानी है, अब कुकिंग नहीं करेगा भगवान को भोग कैसे लगेगा। बोले कि करो, कहते नहीं करूंगा, मारा मेरे को, मैं तो चामर कर रहा था, मारा क्यों? वो बड़ी देर उसको समझाया गया, फिर सबने बलराम जी से प्रार्थना की कि भैया मारना वारना नहीं, तो नहीं खिलाएगा नहीं। तो बलराम जी ने फिर कुछ सिग्नल दिया कि ठीक है आगे से नहीं मारूंगा, तब उसने कुकिंग की। अभी जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा हुई है, जगन्नाथ जी तो रथ यात्रा में हमेशा दिखाए थे हु इज द कंट्रोलर। आप लोग गए होंगे रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी? नहीं गए? कोई भी नहीं गए? नहीं नहीं, रथ यात्रा, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ, मतलब तीनों का रथ बहुत बड़ा बड़ा होता है, हैवी, वेरी हैवी, और उस पे 100 पंडित तो चढ़े होते हैं जब चल रहा होता है। इतने मोटे मोटे रस्से बांधे जाते हैं, चार होते हैं जिसको जिसे खींचा जाता है, और लाखों लोग होते हैं एक एक रथ खींचने के लिए। तो हम लोग भी जब रथ के रस्से के पास थे और सोच रहे थे खींचेंगे, तो खींचते थोड़ी, हम तो अपने गिरने से बचाते हैं, रस्सा पकड़ के हम गिर ना जाएं, और कुछ नहीं है। खींचने के लिए जगह चाहिए, मतलब पूरे फोर्स लगाने के लिए जगह चाहिए ना, इतनी जगह कहाँ है? तो गिरने से बचने के लिए रस्सा पकड़ लेते, गिरे ना, गिर गए तो 10-15 हजार तो आपके ऊपर से ऐसे गुजर जाएंगे लोग। तो खींच कौन रहा होता है रास्ता? आसपास भी देखो कोई खींच ही दे रहा है, सब तो बच रहे हैं खींचने से। तो एंड में जो 4-5 लोग होंगे जो रस्से के एंड में हैं, वो खींच सकते हैं, और उन लोगों से रस्सा भी नहीं हिलने वाला, रथ तो दूर की बात है। रस्सा इतना मोटा है तो रथ कैसे चलता है? नहीं, रथ चलता जा रहा है, रस्सा ऐसे पकड़े हुए। तो यहाँ तो खैर बहुत छोटा एग्जांपल है ना, वहां तो पक्का दिखता है, रथ चलता कैसे है? सिर्फ जगन्नाथ जी की मर्जी से, उनकी मर्जी से जब रुकना है तब उनकी मर्जी से रुकना, चलना तो उनकी मर्जी से चलना, और कोई रास्ता है ही नहीं, खींच ही नहीं सकते। अब कैसी साल जाके देख लेना, खुद एक्सपीरियंस, रास्ता खींच ही नहीं सकते, है ही नहीं, जगह ही नहीं है, भीगा भी तो हो। नहीं आगे, रस्से से आगे, हाँ रस्से के बीच में तो किसी को नहीं आने देते, ऐसे पुलिस वाले हटाते रहते हैं, क्योंकि नीचे नहीं आ रस्से, मतलब लोग इतने होते हैं ना, किसी दब ना जाए, कुचल नहीं ना जाए, तो खींचने की जगह ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो अपने सिर लगाया था तब रथ चला, या तो रस्सा चलता है या रथ चलता है भक्तों के, नहीं भक्तों के खींचने से नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, लव की स्ट्रेंथ से, उनका जो प्रेम से वो खींचता जाता है ना, प्रेम जब दिखता है ना भगवान को, तब रथ चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। वो तो खैर लीला कर रहे थे दोनों, कंपटीशन हो रहा था दोनों में। स्नान यात्रा होती है 15 दिन पहले, ओके बताता, स्नान यात्रा होती है 15 दिन पहले, और हजारों टन पानी से उनको नहलाते हैं, बहुत बाल्टियां लगे, हजारों हजारों घड़े होते हैं, और तीनों को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को नहलाया जाता है, पेंट होता है, हाँ ओके, तो जो मटेरियल आंखों को दिखता है पेंट है तो उतर जाता है, और फिर 15 दिन जब भगवान बीमार होते हैं तो उस टाइम जो है उनका पेंट दोबारा से किया जाता है, और वाकई भगवान को बुखार होता है। ये एक डॉक्टर गए थे बॉम्बे से, तो उन्होंने पंडों से कहा कि मैं नहीं मानता भगवान को बुखार हो सकता, तो उन्होंने कहा ठीक है आप थर्मामीटर लगा के चेक कर लो, तो थर्मामीटर लगाया, बगल में था, बुखार था, क्यों नहीं हो सकता। और भगवान को उस टाइम वो जड़ी बूटियां भी दी जाती हैं, हाँ अन्नावसार पीरियड होता है और जड़ी बूटियां दी जाती हैं, और उस टाइम उनकी डाइट भी एकदम लाइट रखी जाती है, 56 भोग नहीं खिलाते, 56 भोग खिलाएंगे तो बीमार आदमी को थोड़ी 56 भोग खिलाते हैं। और उनके जो सेवायत होते हैं, जो दैत्यपति जो उस टाइम सेवा कर रहे थे, वो भी ऐसा कुछ नहीं खाते, वो भी मतलब लाइट एकदम खिचड़ी खाएंगे, और वो भी वो हर्बल मेडिसिन लेते हैं उस टाइम, और घर से बाहर भी नहीं निकलते वो लोग 13-15 दिन जो भी होता है। तो पुरी में वही होता है जो जगन्नाथ जी जाते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। कृष्ण है राधा के वियोग, नहीं वो तो सारा टाइम ही वियोग में रहते हैं ना, उस टाइम बुखार बहुत ज्यादा नहला देते हैं ना, पानी खूब डालते हैं। क्या एक मिनट, भोग की बात कर रहे थे, हाँ वो तरीका अलग है, जगमोहन हाँ, उसमें जब उनकी छवि दिख जाती है तब भोग हो गया। प्लेट में पानी रखते हैं, पानी में जब छवि दिख जाती है जगन्नाथ जी की तो मानते हैं भोग लग गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं एक जगमोहन एक हॉल है बहुत बड़ा मंदिर जगन्नाथ जी के सामने, उधर सारे बर्तन ला के रखे जाते हैं, पॉट्स एज इट इज, सारे पॉट्स, और उनका कुछ समय होता है कि इतने समय तक जितने पॉट्स आ गए उतने का ही लगेगा, तो जितने पंडे हैं गरम गरम पॉट्स होते हैं ले लेके भागते हैं कि जितने ज्यादा मैं जगन्नाथ जी को भोग लगा पाऊं। पंडे छह बार। और अभी जब गुंडीचा में भगवान रहते ना, जब रथ यात्रा के बाद, तो भोग जो है मेन मंदिर में बनता है, गुंडीचा में किचन नहीं है, वहां नहीं बनता। और यहाँ से ट्रांसफर होता है, गाड़ियों में नहीं लेके जाते, खुद उठा के लेके जाते हैं सब पंडे। 3 किलोमीटर का रास्ता है। क्यों, मैंने पूछा था, बोले गाड़ी में लेके जाएंगे, गाड़ी में पहिए होते हैं और सड़क पे किसी कुत्ते का मल मूत्र पड़ा होगा तो उस पे से गाड़ी गुजरेगी तो वो भोग नहीं लगा सकते, तो हम खुद लेके जाते हैं देखते हुए कि उसके ऊपर से ना जाएं। ये कॉन्शियसनेस देखो ना कि जगन्नाथ जी को हम ऐसी चीज भोग नहीं लगा सकते, और भागते हुए लेके जाते हैं उस समय भी जगन्नाथपुरी के, जाने दो बाबा मैं कल से आया हुआ हूँ, कुछ काम भी कर रहे तो कितने बजे अभी है, ओके। तो ये है कॉन्शियसनेस उनकी सेवा की जगन्नाथ के लिए।
आपको दिन में वहाँ से घंटा आ जाएगा, वो आपको लेके जाएगा, दर्शन कराएगा, तो शाम को प्रसाद आ जाएगा, शाम को बोलते हैं तो यहाँ देखते हैं जी प्रसाद आता है, कोई दे रहा है, वो भी इस बोतल और वो पूरी इतना सुनकर लेके आया, उन्होंने वो गेस्ट हाउस में एंटर किया, पहले एक दूसरे आदमी ने साथ था उसमें पहले वहाँ पर पहुँचा मारा, फिर वो सामने नीचे उतरी, फिर उन्होंने उसमें से हमारे लिए प्रसाद निकाला, फिर उसको उठाया, फिर दोबारा पहुँचा लगा, तो वो तब लेके गया। अच्छा उसके बाद देखिए भगवान की लीला भी क्या, मतलब कि वहाँ तो भोग लगता है, जो प्रसाद आया वो हम सामान्य पर ही धन नहीं खाते हैं, वहाँ पे मुझे ये लगा यार आप भोले को लगता है उसके बाद उसमें फाइनली क्या था, खीर जैसा मैं जो लास्ट में कितना सा वो रहता है तो उन्होंने मुझे बोला था ये आप सबसे लास्ट में पा, थोड़ा सा काम में का भूखा है और वो सारा खाने के बाद जैसे ही मैंने वो एक चम्मच, हमारे चार लोग थे वो एक चम्मच मेरे हिस्से में आई हुई, एक चम्मच खाते ही मेरा प्रश्न था वो ऐसे ही डाइजेस्ट हो गया जैसे आया था, बिल्कुल कोई मतलब नहीं कि कुछ भी ऐसा महसूस हो कि आपने वहां से किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी की तरफ देखता भी नहीं है, जो मैं कहूँ से वो करना है, आपको कुछ भी देगा, आप ये मत सकता कि आपके ऊपर कोई अनुग्रह कर रहा है, उसको इन रिटर्न चाहिए होता है, इसलिए किसी चक्कर के लिए। और एक काम और करना, आपसे अगर कोई पूछ ले तो बोलना हम इलाहाबाद से
वो अलग ही है। यस बिल्कुल बिल्कुल। हमारी क्लास ऐसी चलती है। ऐसे ही अकबर बादशाह दिल्ली से गए थे रूप गोस्वामी से मिलने वृंदावन। रूप गोस्वामी के पास गए तो उन्होंने कहा रूप गोस्वामी से कि मैं यहाँ कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? रूप गोस्वामी ने कहा ये जगह आपके लिए नहीं है। नहीं 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 आप बताओ। ठीक है, वो केशी घाट पे जाना, वहाँ इतने सारे स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में ना एक एक स्टेप में थोड़ा सा कॉर्नर टूटा हुआ है, वो ठीक करा दो। तो अकबर कहते हैं क्या बाबा जी, देखो ना क्या काम बताया, एक स्टेप थोड़ा सा टूटा हुआ है वो ठीक कराना है, क्या काम है? तो खैर कहा है तो चल के देख लेता हूँ। जब गए तो रूप गोस्वामी की कृपा से उनको केशी घाट के असली दर्शन हो गए। तो एक एक स्टेप मोतियों रत्नमणियों से बना हुआ था, हीरे जवाहरों से, जवाहरातों से। तो कहता है कि मेरे पूरी धन संपत्ति इतनी नहीं है कि मैं एक कॉर्नर भी इसका ठीक करा सकूं। आई एम नॉट वर्थ इट। हमें नहीं दर्शन होते ना वृंदावन धाम के, हमें तो सुअर दिखते हैं, ओपन सुअर दिखते हैं, पेड़ टूटे हुए पेड़, एक एक पेड़ कल्प वृक्ष है, हमें कहाँ दिखता है? कृपा से ना, रूप गोस्वामी की कृपा से हुई थी। जैसे वो धनुर्धर को भी तो रामानुजाचार्य की कृपा से रंगनाथ जी के दर्शन हो गए, नहीं तो नहीं होने वाले थे। वही तो चाहिए, नहीं तो कहाँ हमें दर्शन होते। राधा कुंड टॉप मोस्ट प्लेस इसके अनुसार भी बताया गया है, हम तो चले जाते हैं कार उठाई पहुंच के राधा कुंड, कहाँ हमें दर्शन हो रहे हैं राधा कुंड के। पर उत्साह निश्चय है, अगर रहेगा तो हो जाएंगे एक दिन। ठीक है चले उधर, यही विराम दे। ग्रंथराज श्री उपदेश अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।
डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, चल रहा है वो, देखो।